अयोध्या 40 दिन चली थी उच्चतम न्यायालय में बहस, 40वें दिन न्यायालय ने कहा बस बहुत हो गया। राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल होने के बाद उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने रोजाना सुनवाई का फैसला किया। सुनवाई के 26वें दिन मुख्य न्यायाधीश ने इस मुकदमे की डेडलाइन 18 अक्टूबर तय कर दी थी। 40 दिन लगातार सुनवाई चली। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया। सुनवाई पर एक नज़र। पहला दिन, निर्मोही अखाड़े ने दावा किया कि वर्ष 1934 से मुसलमानों ने विवादित ढांचे के भीतर कभी प्रवेश नहीं किया। निर्मोही अखाड़े ने यह भी दावा किया कि 2.77 एकड़ जमीन पर उनका आधिपत्य है। ढांचे का भीतरी बरामदा और राम जन्मभूमि कई सौ वर्षों से निर्मोही अखाड़े के आधिपत्य में है। बाहरी बरामदे में स्थित सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह भी निर्मोही अखाड़े के पास ही है। दूसरा दिन, उच्चतम न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि भक्तों की आस्था ही अपने आप में प्रमाण है कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्म स्थान है। उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि जीसस सरीखे किसी अन्य के जन्म स्थान को लेकर ऐसा विवाद किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था। इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय ने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि जब कुर्की की कार्रवाई की गई थी उसके पहले का कोई ऐसा राजस्व संबंधी रिकॉर्ड है जिसमें राम जन्मभूमि के कब्जे का उल्लेख हो। निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता ने कहा कि वर्ष 1982 में जो डकैती की घटना हुई थी उस घटना में यह सब रिकॉर्ड चले गए। तीसरा दिन, राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही थी तब जस्टिस देवकी नंदन इस मामले में पक्षकार बने थे। वो भगवान राम के निकट मित्र के तौर पर पक्षकार बने थे। उच्चतम न्यायालय ने तीसरे दिन पूछा कि क्या जन्मस्थान भी वादी बन सकता है। इस पर रामलला विराजमान के अधिवक्ता के परासरन ने कहा कि जन्मस्थान भी वादी हो सकता है। चौथा दिन, रामलला विराजमान के अधिवक्ता के परासरन ने राम जन्मभूमि के धार्मिक महत्व को उच्चतम न्यायालय के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सदियों से वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। पांचवा दिन, इस प्रश्न पर बहस हुई कि विवादित स्थल पर मंदिर था या नहीं था। रामलला विराजमान के अधिवक्ता ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि वहां पर मंदिर बना हुआ था। मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर के ऊपर मस्जिद का ढांचा बना दिए जाने से मंदिर की पवित्रता में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। छठा दिन, रामलला विराजमान के अधिवक्ता ने कहा कि मंदिर का ढांचा तोड़कर मस्जिद बाबर ने बनवाई या औरंगजेब ने, इस तथ्य को लेकर भ्रम है। विश्व स्तर पर ऐतिहासिक विवरण का अध्ययन करने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, मगर एक तथ्य पूरी तरह स्पष्ट है कि भगवान राम का जन्म वहीं पर हुआ था। इस विषय को लेकर कहीं पर कोई भ्रम नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सरयू नदी में स्नान करने से उसी तरह का पुण्य लाभ मिलता है जितना राम जन्मभूमि का दर्शन करने से। उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि यह पुराण कब लिखा गया था। कोर्ट को बताया गया कि यह पुराण महाभारत के समय में लिखा गया था। सातवां दिन, रामलला विराजमान के अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मस्जिद किसी जमीन पर नहीं बनाई गई थी। खुदाई के पश्चात वहां पर बाल रूप में भगवान राम की मूर्ति पाई गई। इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां खुदाई में मिली। आठवां दिन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के व्यस्त होने की वजह से आठवें दिन सुनवाई नहीं हुई। नौवां दिन, रामलला विराजमान के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाई गई थी। दसवां दिन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। विवाद सिर्फ उस जन्म स्थल को लेकर है। पुजारी गोपाल दास के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि इस मुकदमे के वह मूल पक्षकार है, उन्हें जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करने का अधिकार है। इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। मस्जिद बनने के बाद भी पूजा बाधित नहीं हुई थी, जबकि वर्ष 1934 के बाद से कभी वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ग्यारहवां दिन, इस मुकदमे के मूल पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि उनका दावा स्वामित्व को लेकर नहीं है। उनके अधिवक्ता सुशील कुमार जैन ने कहा कि हम मंदिर की देखरेख वर्ष 1934 से करते आ रहे हैं। हमारा दावा वहां पर कब्जे को लेकर है। वहां का कब्जा भगवान राम के निकट मित्र को नहीं दिया जा सकता। बारहवां दिन, निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता ने कहा कि हमारे द्वारा मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। हम पूजा करने एवं प्रबंधन का अधिकार चाहते हैं। भगवान राम के निकट मित्र की तरफ से दावा वर्ष 1989 में आया था, जबकि निर्मोही अखाड़ा इसके पहले से मंदिर की देखरेख करता आ रहा है। इसलिए यह अधिकार पुजारी को या फिर भगवान राम के निकट मित्र को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि तीन गुंबद वाले आकार के निर्माण को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। 13वां दिन अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्र ने स्कंद पुराण एवं अन्य धार्मिक शास्त्रों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बाबर के अयोध्या आने का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। मीर बाकी, जिसे बाबर का सेनापति बताया जाता है, इस नाम के व्यक्ति का भी विवरण कहीं पर नहीं मिलता है। 14वां दिन हिंदुओं की तरफ से दलील दी गई कि बाबरनामा में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। 15वां दिन इस बात पर बहस हुई कि इस मामले का पता लगाया जाना चाहिए कि बाबर ने अगर मस्जिद का निर्माण कराया था तो निर्माण के बाद विवादित ढांचे को अल्लाह को समर्पित किया था या नहीं। 16वां दिन हिंदुओं की तरफ से दलील दी गई कि मस्जिद में वजू करने के लिए पानी की टंकी आदि का कोई प्रबंध नहीं था। मस्जिद में तस्वीरें नहीं लगाई जाती हैं, जबकि विवादित स्थल पर तस्वीरें लगी हुई थी। 17वां दिन मुस्लिम याचिकाकर्ता एम सिद्दीक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि 1934 में हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ दिया था। उसके बाद 1949 में अवैध घुसपैठ की और फिर 1992 में मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब इनकी मांग है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, कृपया इन सब में मत पड़िए, आपके तर्क मुद्दे पर आधारित होने चाहिए। 18वां दिन मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोई चमत्कार नहीं हुआ था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात योजनाबद्ध तरीके से मूर्तियों को लाकर छिपा दिया गया था। 19वां दिन मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने स्वामित्व का दावा कभी नहीं किया था। निर्मोही अखाड़ा केवल पूजा का अधिकार चाहता है। 20वां दिन मुस्लिम पक्षकार के अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा का दावा है कि वो बाहरी आंगन में राम चबूतरे पर वर्ष 1855 से पूजा करते आ रहे हैं। राम चबूतरे पर पूजा के अधिकार से उन्हें कभी वंचित नहीं किया गया, लेकिन वहां पर स्वामित्व हमारा था। 21वां दिन वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्ति छिपा दी गई थी। यह एक गलत कार्य था। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया। 22वां दिन मुस्लिम पक्षकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि उन्हें फेसबुक पर धमकी दी गई है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि क्या उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। 23वां दिन हिंदुओं की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि विवादित स्थल पर वर्ष 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि वर्ष 1934 से लेकर वर्ष 1949 के बीच भी नमाज पढ़ी जाती थी। 24वां दिन केएन गोविंदाचार्य के अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि काफी संख्या में लोग इस मुकदमे की सुनवाई को देखना चाहते हैं। सभी लोगों को कोर्ट में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं मिल सकती। ऐसे में इस मुकदमे की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। 25वां दिन मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि साक्ष्य देकर बताया जाए कि भगवान राम उसी विवादित स्थल पर पैदा हुए थे। 26वां दिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो शनिवार को भी सुनवाई की जा सकती है। 27वां दिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि राम चबूतरे के पास बनी रेलिंग के पास लोग पूजा करने क्यों जाते थे। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि किसी गवाह के बयान से स्पष्ट नहीं होता है कि लोग वहां क्यों जाते थे। 28वां दिन मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि पूरे देश में वातावरण तैयार करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया ताकि सच किसी के सामने न आ सके। 29वां दिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि हिंदू पक्ष की इच्छा है कि मौजूद निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए, इसके बाद वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। 30वां दिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि केवल विश्वास के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता कि अयोध्या में मंदिर था। 31वां दिन एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर उच्चतम न्यायालय ने सुन्नी बोर्ड को फटकारा और कहा, वो इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, इस मामले पर ट्रायल कोर्ट में सवाल उठाना चाहिए था। 32वां दिन एएसआई की रिपोर्ट पर उठाया गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि विवादित ढांचे के नीचे एक ईदगाह हो सकती है। 33वां दिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने एएसआई की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उसे महज एक विचार बताया और कहा कि इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। 34वां दिन अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार के अधिवक्ता ने कहा कि वर्ष 1885 के मुकदमे और अभी के मुकदमे एक जैसे ही हैं। 35वां दिन श्री रामलला विराजमान की ओर से दलीलें दी गईं। पुरातात्विक खोज में मिली दीवार मंदिर की ही है। 36वां दिन मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने राम जन्म स्थान पुनरोद्धार समिति को नया तथ्य रखने से रोक दिया। 37वां दिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यदि मस्जिद के लिए बाबर द्वारा इमदाद देने के सबूत नहीं है तो राम मंदिर के दावेदारों के पास भी कहानियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 38वां दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल क्यों पूछा जा रहा है। 39वां दिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साफ कहा कि आज 39वां दिन है, कल बहस का आखिरी दिन होगा। 40वां दिन उच्चतम न्यायालय में बहस समाप्त हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा, बहुत हो गया।